तो ये जो बाबा जी यहाँ दफन हैं, इनकी उम्र राउंड अबाउट 100 साल के करीब थी और मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ही पास्ट इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करते रहे, दुखी लोगों की मदद करते रहे, गरीबों के काम आते रहे, लड़ाई झगड़े में लोगों को सुलह सफाई कराते रहे, घरों में जो नफरतें हैं उनको मोहब्बतों में बदलते रहे, उसमें उनका जो किरदार होता है वो समझो कि हर मामले में उसको सुलझाने का किरदार होता है, उलझे हुए मामलात को सही कर देना। तो ऐसे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। जो बीमार लोग कोई आते हैं उनकी लिए दुआ भी करनी, उनके लिए कोई दवाई का भी बंदोबस्त करना, और जो परेशान हाल लोग होते हैं उनके लिए दुआ भी करना, फिर उन्हें कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सबक भी देना कि ये पढ़ो ताकि तुम्हें रूहानी सुकून हासिल हो। तो ऐसे वो सारा सिलसिला चलता रहता है और इसके साथ साथ वो ख़ुद भी अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, दुनियावी कामों में बहुत कम ही हिस्सा लेते हैं, बहुत शदीद ज़रूरत में अपना वो दुनिया के काम करते हैं। मतलब ज़रूरत है तो छोटा सा मकान बना लेना, ज़रूरत है तो कोई चीज़ ले आना, वो दौलत के पुजारी नहीं होते, ना ही उन्हें शौक़ होता है कि पैसे इकट्ठे कर लें। अगर कहीं से आ भी गए तो वो अल्लाह की राह में ही उन्होंने खर्च कर देने हैं, या लंगर पका के खाना खिला देना लोगों को, या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। तो ऐसे वो ज़िंदगी उनकी गुजरती रहती है। तो ऐसे ही ये जो बाबा जी जिनका जिक्र है ग़ुलाम समदानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी अपने 100 साल ज़िंदगी के पूरे किए और हम देखते रहे कि वो ऐसे ही उनका शब रोज़ के मामूलात थे। और जब वो फौत हो गए तो इट वाज 1974 वो इस दुनिया से रुखसत हो गए अपनी तबाही ज़िंदगी पूरी करके। और मज़े की बात है, हमने उन्हें 100 साल की ज़िंदगी में कभी बीमार होते नहीं देखा, कभी हॉस्पिटलाइज नहीं देखा, जब भी देखा वो ठीक ही होते थे। बहरहाल 1974 के बाद फिर उनको दफन करने के बाद जो उनके पैरोकार थे या उनके पास बैठने वाले अहबाब थे, उन्हें मुरीद भी कहा जाता है, मुतकद भी लोग होते हैं और प्यार मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, ऐसी शख्सियत के साथ लोग बहुत उनस रखते हैं जो दर्दमंद हो। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि इनके ना जी ज़रा कब्र मुबारक को बेहतर अंदाज में खूबसूरत बनाया जाए। तो खूबसूरत बनाने के लिए फिर उन्होंने उनके एक मुरीद कह लो, बूढ़ा था आदमी था, वो मिस्त्री था, कारीगर था, अपने काम का मास्टर था। तो उसने कहा जी कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से ये कुछ भी यहाँ बना जाऊँ, इनका मज़ार मुबारक। तो फिर उसने शुरू कर दिया और बाकी साथी जो थे उसकी मदद में आ गए, उन्होंने मिल मिला के मटेरियल भी ले आए, ईंटें भी आ गई, सीमेंट भी आ गया, सरिया भी आ गया, और जैसे जैसे वो बनाता गया तो ऐसे एक खूबसूरत सा गुंबद उन्होंने कब्र के ऊपर बना दिया। अब वहाँ जो था आने जाने वालों का सिलसिला तो जारी था, ज़ाहिर जो लोग आते हैं फिर उनके लिए खाना भी पकता है, वो उस खाने को हम कहते हैं ये लंगर पकाया हुआ है। तो लंगर में भी लोग ऐसे ही जॉइंटली शामिल होते हैं, कोई दाल ले आता है, कोई घी ले आता है, कोई लकड़ियाँ ले आता है, कोई चावल ले आता है, कोई आटा ले आता है, तो ऐसे कलेक्टिवली वो सारा मटेरियल आ जाता है। तो जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो उसे पका के तो ज़ायरीन जो आए होते हैं लोग उनको खिला दिया जाता है। तो ये सिलसिला इसे हम कहते हैं लंगर हाजी। कोई एक आदमी वो नहीं कर रहा होता, इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट, वो लंगर सिलसिला चल पड़ता है। तो आज तकरीबन 50 साल हो गए हैं ये सिलसिला लंगर का वो चल रहा है, ऐसे ही चलता है। कोई जो सामान होता है उसमें गंदम आ जाती है, बाजरा आ जाता है और घी आ जाता है, चीज़ें आ जाती हैं सारी, कोई ले आता है, कोई थोड़ी ले आता है, कोई बहुती ले आता है, तो सब वो इकट्ठी करके फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो जो ज़रूरत होती है वो खाना पकता रहता है, लोग खाते रहते हैं और सिलसिला जारी है। आज भी वो सिलसिला जारी है और 50 साल से जारी है। और इसके साथ साथ लोग आने वाले वहाँ बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं, अपनी हाजात के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं और कुरान पाक पढ़ कर इसाले सवाब भी करते हैं। अल्लाह पाक कुरान की बरकत से इन बुज़ुर्गों के दर्जात बुलंद करें और इन्होंने ज़िंदगी में बड़े अच्छे काम किए, इनकी दुआएं हमारे शामिल हाल हों। तो ऐसे बैठ के लोग अपने सुकून कलब के लिए वहाँ वक्त गुजारते हैं। कोई आया कोई चला गया, कोई आया कोई चला गया, ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है और एक प्यार और मोहब्बत की फिजा रहती है। जबकि मदार से बाहर मोहल्लों में और घरों में वो प्यार और मोहब्बत नहीं होता, वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वहाँ नफरतें होती हैं, फसाद होता है। वेयर एज़ दरबार के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं होती, इट्स वेरी काम क्वाइट और इशार मरवत के जज्बे नज़र आते हैं। हाँ जी, खाने वाला कहेगा तू तू पहला खा ला, ये खा ले, हाँ जी दूसरे को ज़्यादा देगा, यही खूबसूरती है लंगर की। अदब और एहतराम के साथ खाते हैं कि जनाब ये खाना जो है ये बाबरकत भी है, अल्लाह की तरफ से ये इनाम भी है। तो ये 50 साल से वहाँ आज ये सिलसिला चल रहा है और आइंदा भी चलता रहेगा।
ये सेटल कब हुए थे
बाबा जी? बाबा जी ऐसा सेटल जो उसके लिए ये था ना जी, बाबा जी की ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना वो सैलानी चलते रहे, सफ़र करते रहे। बचपन से ही इन्हें शौक़ था अल्लाह के नेक बंदों की महफिल में बैठने का, तो ये घर से ज़्यादा सफ़र कर ही रहते थे, जहाँ सुनते जो वहाँ दरवेश है तो वहाँ चले जाते। तो ऐसे इन्होंने अपना वक़्त जो इब्तदाई था वो भी सफ़र में ही गुजारा और करते करते ये सफ़र ईरान चले गए, ईरान से फिर आगे इराक में चले गए। तो उस ज़माने में ये इट वाज 1910 की बात है ये कि ये इराक में चले गए। उस ज़माने में फर्स्ट वर्ल्ड वार आगाज़ हो चुका था, तो ये उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इन्होंने कोई थोड़ा सा पार्ट प्ले किया, कहीं अंग्रेज़ की हुकूमत में नौकरी करते रहे, लेकिन जो इनका मकसद वो नहीं था। तो ये आगे मज़ारात की, बस ईरान में मज़ारात हैं बहुत, वहाँ कुछ वक्त गुजारा, फिर आगे बसरा चले गए, फिर बगदाद शरीफ चले गए। तो वहाँ जा गए ना जी सरकार गौस पाक के मज़ार पर, ये रुक गए, फिर आगे नहीं कहीं गए, वहीं इन्होंने अपना वक्त गुजारा और वहीं से इन्हें रूहानी तालीम हासिल हुई। और वो उसी रूहानी तालीम को लेकर फिर हुक्म हुआ वहाँ से कि अब वापस अपने वतन चले जाओ इंडिया। उस ज़माने में ये एक ही मुल्क था, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही मुल्क था, तो वापस आ गए। वो तो इस तरह से अपने इलाके में ये रूहानियत के काम करते रहे।
जब वापस आए, इंडिया वापस आए, तो इन्होंने फिर ककराली
आए। ककराली में जो आ रहा है
मतलब इस
ये, हाँ जी, ककराली में लोग कुछ ऐसे थे जिनके पास इनका आना जाना था, और जो जहाँ अच्छे लोग हों, प्यार मोहब्बत की हों, वहाँ इनका फिर ज़्यादा आना जाना था, और यहाँ ये कुछ ऐसा रहते भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ चंद महीने रहे होंगे यहाँ, लेकिन ज़्यादा ये गुजरात शहर में उन्होंने अपना एक मकान बना लिया 1920 में। तो 1920 में जो मकान बनाया फिर उसी में रहते रहे। तो 1920 वाला मकान जो है बना, वो आज भी हमारे पास मौजूद है, तो हमने वो निशानी के तौर पर संभाला हुआ है। ककराली में आना जाना बहुत था, लेकिन रिहाइश के तौर पर यहाँ नहीं रहे वो। लेकिन जब दफन की बारी आई ना, तो फिर ककराली वाले जो ना वो ले गए कि जी हमने उनको अपने गाँव दफन करना।
अच्छा ठीक है, तो मतलब उनका गांव, उनका अपना गांव नहीं था?
नहीं, इनका अपना गांव आगे नॉर्दर्न एरिया में है, ठूठा राय बहादुर, वहाँ ये पैदा हुए थे। ठूठा राय बहादुर
किस साल में
ना? ये अब साल 1947 में तो ये चले गए ना बगदाद शरीफ, तो ज़ाहिर है उससे पीछे कहीं 1890 में पैदा हुए होंगे। और ये जो तहरीके पाकिस्तान थी, जब 1947 में तहरीक चली कि जी पाकिस्तान बनाया जाएगा और मुसलमानों को अलहदा मुल्क लिया जाएगा, उसमें भी बाबा जी एज ए वर्कर शामिल रहे। हाँ जी, पाकिस्तान बनाने में जो लोग इकट्ठे होते थे, जलसे मलसे होते थे, उनमें बाबा जी बड़े पेश रहते थे कि हमने अपना मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाना है, तो उसमें भी बड़ा हिस्सा लिया। हाँ, ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी अपना इनका किरदार था, लेकिन कोई लीडर टाइप नहीं थे, वर्कर टाइप थे। जैसे
ये जो अपने इल्म हासिल किया है, ये सारा
बगदाद से सिर्फ रूहानियत की मतलब बाग वगैरह से किया गया ना, बाकी जो है वो जहाँ जहाँ भी ये सफ़र करते थे वहाँ से जो भी इलम हासिल होता वो ले लेते। एज सच बाकायदा किसी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में MBA पास नहीं किया, लेकिन जहाँ भी जब बैठते जाते किसी महफिल में मजलिस में, तो वहाँ जो इलम हासिल होता है वो हासिल करते, या किसी काबिल आदमी के पास बैठ जाते तो वहाँ से कुछ हासिल करते, अरबी का, फारसी का, ये इलम उन्हें हासिल था, हिकमत का, ये दानाई का, ये दवाइयों का, हर किसी के पास बैठा है तो वो उन्हें हासिल हुआ है। इलम तो ऐसे भी होता ना, सफ़र करो, मुस्लिम जगह पर जाओ, लोगों से मिलो, अच्छे लोगों के पास बैठो, उनकी बातें सुनो, उनसे क्वेश्चन करो, तो आपको इलम हासिल होता है। तो ये तो ज़्यादा बेहतर इलम होता है, बजाय कि आप क्लासों में जाके अटेंड करें और रोज घंटा पढ़े, ये तो इलम ज़रा नाकस होता है। लेकिन ये जो दूसरा इलम है ना, सफ़र करना और जाना और किसी काबिल आदमी के पास कुछ दिन गुजारना, असल तो इलम वो होता है ना, उसकी महफिल में रह के। हमारे बाबा जी के पास भी लोग आते थे, आके 4-5-6 दिन 10 दिन रहते थे, और ज़ाहिर है वो जब उनका रहना वो कुछ हासिल करने के लिए आते थे, इलम हासिल कर लिए आते थे। نے بھی جو علم حاصل کیا وہ بابا جی کے پاس بیٹھ کے حاصل کیا.
اچھا یہ مطلب
میں نے جو حاصل کیا, مطلب میں نے جو فارسی پڑھی, عربی پڑھی, قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, حکمت کی چیزیں سیکھیں, سب انہیں سے انہیں کے پاس بیٹھ کے سنتے رہے, سمجھتے رہے, پوچھتے رہے. تو وہ ایک سرٹن کوانٹٹی آف نالج وہاں سے حاصل ہوا.
تو یہ جو آپ کا انٹرسٹ جو پیدا ہوا ہے اس کے اندر یہ نیچرل تھا؟
نہیں, گھر میں ماحول ہی ایسے تھا نا, جب گھر کا ماحول ہو تو پھر وہ انٹرسٹ خود ہی بن جاتا ہے. ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا, وہاں سادگی تھی, تعلیم تھی, علم کی باتیں تھی. ہاں جی, اور جب بچوں کو پاس بٹھا کے یا اس کے کان میں علم کی باتیں ڈلتی جائیں گی تو ظاہر ہے انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا. اور تو کوئی شغل ہوتا نہیں تھا, نہ ریڈیو, نہ ٹی وی, نہ کوئی شاید, نہ اخبار, نہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. دو بزرگوں کی باتیں ہی ہوتی تھیں, یہ ان کی محفل ہی ہوتی تھی, وہی اچھی لگتی تھی.
جو مرید ادھر کرالی تھے جنہوں نے اللہ کے دفن کیا, تو ان کے اب فیملیز بھی ادھر ہی ہیں, وہ بھی آ کے اب,
ہاں ظاہر ہے وہ لوگ
جو
جنریشن تو نہیں کہ ادھر ہی ہے, ان کے جو آگے اولادے ہیں وہ ادھر ہی ہے. وہ ویری ویل کہ یہ بارے بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے, ہستی ایوری ون آف ککرالی ڈوز ویری ویل. کئی سال تک اس گاؤں میں یہ انہیں گلیوں میں پھرتے رہے, لوگ جو ہے ان کی باتوں سے, ان کی کردار سے, ان کے بڑی اچھی طرح آگاہ ہے, واقف ہے.
یہ اپنے
پیدائشی شہر واپس نہیں گئے کبھی؟ پیدائشی گاؤں میں میرے خیال میں پھر نہیں گئے. ایک تو وہ برانی کو علاقہ پہاڑی تھا, وہاں بھوک ہی بھوک تھی, اور وہاں پھر مجھے نہیں علم کیے ہوئے واپس وہاں اپنے گاؤں جا کے رہے وہاں, یا پھر یہ آگے ہی گئے ہیں. شادی جناب انہوں نے کی تھی, اب میں سمجھ لو میرا بڑا بھائی جو پیدا ہوا سمجھو تو 47 میں تو میں پیدا ہوا, تو 44 میں بڑا بھائی پیدا ہوا, تو یہ شادی میں 43-42 میں ہوئی ہو, 42-43 میں,
مطلب ورلڈ وار 2 جاری تھی.
ہاں ورلڈ وار 2 جاری تھی.